नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमरीका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।